नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल पत्रकार सबी हुसैन। नमस्कार सबी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद प्रियंका।
आगे चर्चा करें उससे पहले अब तक की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। एशिया कप क्रिकेट में कल सुपर फोर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डीकॉक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस लिया। कोरिया बैडमिंटन ओपन कल से शुरू, और सुल्तान जोहर हॉकी कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और कल सबकी निगाहें गढ़ी रही खेल के मैदान में, एशिया कप क्रिकेट में जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा था, और भारत ने पाकिस्तान को सुपर फोर चरण के मुकाबले में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
कल सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में अभिषेक शर्मा की 74 और शुभमन गिल की 47 रन की जबरदस्त पारी ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई, और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। मैच में रोमांचक मोड़ तब आया जब शतकीय साझेदारी के बाद पाकिस्तान ने जल्द 4 विकेट झटके, लेकिन तिलक वर्मा ने 19 गेंद में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 30 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने 18 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट पर 174 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। अभिषेक शर्मा ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए, और उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत से भारत का नेट रन रेट बेहतर हो गया है और खिताब का प्रबल दावेदार बन गया है। भारत का अगला मुकाबला 24 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
कल मैच के हीरो रहे अभिषेक, और उन्होंने देखा जाए युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी तेज अपना उन्होंने अर्धशतक लगाया 24 गेंद में 50, जबकि युवराज ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था और उन्होंने 29 गेंद में 50 रन बनाए थे।
जी हम भारतीय टीम की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम होगी, क्योंकि है ना, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को कल धूल चटाई और उससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, तो उससे ये दिखता है कि मतलब अपनी भारतीय टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है इस बार एशिया कप को जीतने के लिए। और जैसे कि सूर्य, हमने कल देखा भी था प्रियंका, कि सूर्य कुमार कह रहे थे कि अब ये राइवलरी नहीं कह सकते हैं अब इसको, क्योंकि राइवलरी होती है कि जब आप कि 15 मैचेस में से कोई 7-8 हो या ऐसे कोई है ना 8-7 की हो, यहाँ पे है ना मतलब कि 13-0 का मतलब ऐसे स्टैट्स है कि 10-3 का है, लेकिन वही ये कह रहे थे कि राइवलरी अब इसको ना देखा जाए, क्योंकि ये एक तरफा कंटेस्ट होने लग गया। और हम भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय टीम हर एक जो भार बॉलिंग हो चाहे बैटिंग फील्डिंग हो, हर एक उसमें मतलब कि है ना मजबूत एक बनकर उभर रही है। और अब बैटिंग भी आप देखिए कि 105 रन की साझेदारी हुई शुभमन गिल और अभिषेक में, और जिसमें से अभिषेक तो जैसे कल सूर्या ने भी बोला था आइस एंड फायर की जोड़ी है, तो यही कहना चाह रहे थे अभिषेक फायर है और आइस जो है शुभमन गिल है, जो अपना काम एंड कंपोज रखता है अपने आप को। तो एक ये साझेदारी हुई, और जब 3 विकेट वो जल्दी खो भी दिए थे, जिसमें सूर्या का भी विकेट, जो हमारे कप्तान का विकेट भी चला गया, तो उसके बाद भी भारतीय बल्लेबाज कहीं भी विचलित नहीं नजर आए, उन्होंने मोमेंटम जारी रखा। और उसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने है ना हमें जीत दिलाई, एक शानदार जीत दिलाई। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान कल, पाकिस्तान ने वैसे कहा जाए तो पहले के मुकाबले जो उन्होंने पहला मैच खेला था उसके मुकाबले कहीं अच्छा प्रदर्शन किया, और उन्होंने 10 ओवर में उन्होंने काफी अच्छा एक स्कोर भी खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब जैसे बता रहे हैं कि 90 रन के आसपास उनके 10 ओवर बन गए थे, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे आए, उन्होंने अपने 3 ओवर में है ना 16 रन देके 2 विकेट झटका के पाकिस्तान की है ना कहीं ना कहीं वो जो लय उन्होंने बनाई थी उसको तोड़ दिया, और फिर अगले 10 ओवर में 80 रन ही बन पाए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने मजबूत शुरुआत भी करी थी तो हमारे गेंदबाजों में वो दमखम है कि उसको अपनी टीम को वापसी दिलाए। और बस एक ही थोड़ा सा जो एक 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 जो कहते हैं कि एक एरिया है जिसमें थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो है फील्डिंग, क्योंकि कल 4 कैच छोड़े जो सूर्य ने भी बोला था कि
5 कैच कल छोड़े, और अभिषेक ने भी 2 कैच छोड़े, लेकिन उसके बाद जो एक कैच लिया डाइविंग के साथ वो बहुत ही जबरदस्त कैच,
वो कैच भी बहुत जबरदस्त था, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से है ना जिसे कहते हैं कि वो जो कवर अप कर लिया जैसा तो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मतलब जिस तरीके की भारतीय एक टीम है जो एक यूनिट है जिसमें इतने नामी बल्लेबाज और इस तरीके की एक जो गेंदबाज इतने अच्छे अच्छे मतलब एक जिस कहते हैं ना कि जैसे कोहेसिव यूनिट तो अगर
लेकिन अगर सभी कल अगर गेंदबाजी की स्पेशली बात करूं तो हमारा जो फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 45 रन दिए, स्पिनर्स का जादू नहीं चला चाहे वो कुलदीप हो, वरुण और अक्षर पटेल, उन्होंने मिलकर सिर्फ 1 विकेट लिया, तो कल जो सारा दारोमदार रहा हमारी बल्लेबाजी पर ही रहा।
बिल्कुल, वो अगर देखिए शिवम दुबे जो है अगर वो 2 विकेट नहीं चटकाते तो हो सकता है कि थोड़ा सा और 10-15 रन स्कोर ज्यादा बना देते, क्योंकि जो उनके कैप्टन है सलमान उन्होंने भी बोला कि है ना कि कहीं ना कहीं मैं 180 से 85 रन का टारगेट है ना देख रहा था और ये थोड़ा सा हमारी कमी रही कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जरूर है कि हाँ जसप्रीत बुमराह देखिए सूर्य कुमार ने भी कहा और हम सब जब हम जो भारतीय फैंस है वो ये देखते हैं कि जब भी जसप्रीत बुमराह आते हैं तो उनसे हमेशा हमें विकेट की आशा रहती है, हमेशा लगता है कि वो हमें टीम को एक है ना बढ़िया शुरुआत दिलाएंगे, 2-3 विकेट चटक लेंगे और जो सामने वाले अपोनेंट को बैकफुट पे ले आएंगे, क्योंकि ये हमने देखा भी है पहले कि जब भी जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते चाहे वो न्यूयॉर्क में हो या उससे पहले दुबई में हो तो ये हम देखते आ रहे हैं। हाँ ठीक है कल एक दिन नहीं चल पाया, 45 रन दिए कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन ये हर बॉलर के साथ हो सकता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की जो क्वालिटी है हम उसको कहते ही हम उसके बारे में
अभिषेक के एक जो शॉट की बहुत ही चर्चा हो रही है, इसमें MS धोनी की जो फेमस हेलीकॉप्टर शॉट की झलक मिलती है जब 8वें ओवर की 4थी बॉल पर जब अयूब ने बॉलिंग की थी तो उसमें उन्होंने बिल्कुल सीधा टॉस फेंका, जैसे MS धोनी हेलीकॉप्टर शॉट की याद दिला दी उसमें वो शॉट के साथ।
अभिषेक के साथ यह है कि एक बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज है, देखिए धोनी एक बहुत संयम एक जब भी वो कप्तान थे बल्लेबाज रहे हमारे इतने सालों तक धोनी ने टीम को जो सर्व किया और इतनी सारी ट्रॉफी दे रहे हैं तो धोनी की एक जो कला शैली थी वो अलग थी, अभिषेक थोड़े से एग्रेसिव है लेकिन हाँ जो इससे यही दर्शाता है कि कितने वेराइटी स्ट्रोक्स हैं उनके पास, मतलब उनके जो जो रेपर्टोयर है उसमें कितने सारे स्ट्रोक्स हैं कि मतलब कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि है ना कि शुभमन एक है ना एक अच्छा है ना उनको एक वो सपोर्ट दे रहे हैं सामने से, ही इज प्लेइंग अ सेकंड फिडल टू हिम, तो उन्होंने है ना एग्रेशन दिखाया, उन्होंने है ना लीड ली और उन्होंने है ना मतलब कि स्कोरिंग तेज रखी, और जिस तरीके के आपने बताया धोनी वाले पर्टिकुलर स्ट्रोक तो वो यही दिखाता है कि उनके पास स्ट्रोक्स बहुत है और जब वो अपनी लय में आते हैं तो वो पूरा दर्शकों को एंटरटेन करते हैं।
बिल्कुल, कल मैच बहुत ही रोमांच से भरा रहा था, कई बार तो सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे भी हो गई, लेकिन कुल मिलाकर हमने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हरा दिया। और कल सुपर 4 का जो मुकाबला है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाला है, डिफेंडिंग चैंपियन है श्रीलंका, तो दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है।
बिल्कुल, बांग्लादेश के खिलाफ वो श्रीलंका हार गए और काफी अच्छी उसमें बल्लेबाजी करी थी बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, बहुत ही एक क्योंकि देखिए चैलेंजिंग मैच था वो बहुत ही बढ़िया मैच हुआ एशिया कप का, वो मतलब मोमेंटम दोनों तरफ शिफ्ट हो रहा था और बांग्लादेश ने वो मैच निकाला, लेकिन श्रीलंका चाहेगा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी और श्रीलंका चाहेगा वापसी करना, पाकिस्तान भी है ना चाहेगा कि है ना कि किसी तरीके से टूर्नामेंट में बने रहे, क्योंकि सुपर 4 की स्टेज एक ऐसी है कि आप तो करो मरो की स्थिति है कि आप एक मैच हारते हैं आप नीचे चले जाते हैं, रन रेट भी गिर जाती है, तो दोनों ही चाहेंगे जीते और आगे बढ़े, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा
जी। कल देखते हैं क्या रोमांच रहने वाला है एशिया कप क्रिकेट में। और क्रिकेट के मैदान में रहते हुए एक खास खबर यह है कि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस ले लिया है। अनुभवी खिलाड़ी क्विंटन को पाकिस्तान दौरे के लिए 1 डे और T20 टीम में शामिल किया गया है और नामीबिया के साथ एकमात्र T20 मैच भी खेलेंगे। तो इस वापसी के साथ क्विंटन डीकॉक ने संकेत दे दिया है कि वह विश्व कप 2027 में खेलते नजर आ सकते हैं। 2023 के बाद इस एक दिवसीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। T20 में उन्होंने ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया लेकिन कई इंटरनेशनल मैच जो है नहीं खेले।
क्विंटन डीकॉक के पास देखिए उन्होंने जब संन्यास भी लिया था तो उन्होंने है ना मतलब कि बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन था क्योंकि उनमें अभी भी कई कई सालों का खेल बाकी था और अभी भी वो है ना जैसा कि हम जानते हैं कि वो IPL में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेल रहे हैं और T20 में अभी भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और हम तो देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के साथ जब वो थे और किस तरीके की यादगार पारियां रही है उनकी और ओपनर जब वो आते थे तो कई उन्होंने मैच जिताए हैं मैचों कई मैचेस के उन्होंने है ना जिसे कहते हैं ना बिल्कुल रूपरेखा ही बदल दी। तो क्विंटन डीकॉक एक बहुत ही मजबूत बल्लेबाज हैं और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम में वो वापसी वो आ रहे हैं तो उनकी मजबूती ही मिलेगी और जाहिर सी बात है 2027 का वर्ल्ड कप सभी टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक अच्छा संकेत भी है दक्षिण अफ्रीका के लिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बहुत ही मजबूत टीम है।
अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय और किरण जौहर चुनौती पेश करेंगे। तरुण मन्नेपल्ली और मीरबा लुवांग मेसनाम कल अपने अपने क्वालिफायर मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में केवल अनुपमा उपाध्याय भारतीय चुनौती रहेंगी। मिक्स डबल्स में मोहित जगलान और लक्षिता जगलान खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में कई बड़े नाम नहीं खेल रहे हैं। लक्ष्य सेन है, पीवी सिंधु है और के श्रीकांत है। सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी है वो नहीं आने वाले
क्योंकि इसकी एक वजह भी रहती है क्योंकि ये खिलाड़ी जो है लगातार टूर्स पे खेलते रहते हैं। उनको है अपने आप को इंजरी फ्री भी रखना होता है, बॉडी को भी देखना होता है, इनको फिजिकल अपने आप को वो देखना होता है कि कितनी इनकी बॉडी ले पाएगी। बिकॉज हमने देखा है कि मतलब कि बैडमिंटन इज अ ग्रुइलिंग स्पोर्ट और क्योंकि रैंकिंग पॉइंट्स बनाए रखने के लिए आपको है ना सुपर सीरीज और ये जो भी बड़े टूर्नामेंट्स होते खेलने होते हैं तो खिलाड़ी पिक एंड चूज करते हैं और हमने देखा है कि लगातार ये लोग खेलते ही आ रहे थे। तो ये कोरिया ओपन में इन्होंने ब्रेक लिया है क्योंकि आगे जो है वो कई बड़े टूर्नामेंट्स है और खास तौर से हम देखें तो नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा जो एक टूर्नामेंट है वो जो है एशियन गेम्स है। तो ये खिलाड़ी सभी लोग चाहेंगे कि अपने आप को थोड़ा इंजरी फ्री भी रखे, फिट भी रखे क्योंकि ये हम ये भी देख रहे हैं कि प्रियंका की ये ओलंपिक साइकिल भी चल रही है लॉस एंजलिस के लिए। तो पिक एंड चूज कर रहे हैं कोरिया ओपन के लिए और साथ में लेकिन ये भी है कि जो हमारे नए खिलाड़ी हैं उनको भी एक मौका मिल रहा है कि अपना
सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी इतनी अच्छे फॉर्म में चल रही है और 2023 में ये खिताब जीत चुके हैं कोरिया ओपन का तो बहुत ही आशा के नजर से देखते हैं उनको कि शायद एक खिताब आ जाए क्योंकि एचएस प्रणय बेशक वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज लेकिन फिर भी एक लय में नहीं आ पा रहा कोई हमारा चटना।
एचएस प्रणय के साथ देखिए एज भी एक फैक्टर है क्योंकि वो अपने मतलब कि अब वो एक एज हैज कॉट अप विद हिम जो हम कहते हैं कि वो खुद भी कहते हैं कि वो फिजिकली अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा वो जरूर है कि वो कंसिस्टेंसी जो है वो लैक कर रहे हैं। तो लेकिन एचएस प्रणय क्योंकि इतने हमारे पुराने खिलाड़ी तो उनसे आशाएं रहेंगी कि है ना कि वो इस कोरिया ओपन में अच्छा प्रदर्शन करें लेकिन साथ में नए खिलाड़ियों से भी हमें आशा रहेगी कि जब जो सीनियर्स हैं वो जब नहीं खेल रहे हैं तो वो अपना अच्छा प्रदर्शन करें और इसमें अपना विजय अभियान जारी रखें।
बात हॉकी की। हॉकी इंडिया ने मलेशिया में सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय जूनियर हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट सुनते हैं विशेष की।
डिफेंडर रोहित भारत की कप्तानी करेंगे। टीम में गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर और फॉरवर्ड खिलाड़ियों का पूरा संतुलन है। इसमें कई उभरते खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा। 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा टूर्नामेंट 18 अक्टूबर तक चलेगा। 11 अक्टूबर को भारत का मुकाबला ब्रिटेन से जबकि 12 अक्टूबर को सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारत और पाकिस्तान का सामना 14 अक्टूबर को होगा जबकि ऑस्ट्रेलिया से 15 अक्टूबर को मैच है। भारत राउंड रॉबिन चरण में आखिरी मैच 17 अक्टूबर को मलेशिया से खेलेगा। राउंड रॉबिन चरण से शीर्ष दो टीमें 18 अक्टूबर को फाइनल खेलेंगी। भारत को लगातार दो बार इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांस्य को स्वर्ण में बदलेगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैम।
28 नवंबर से जूनियर विश्व कप की तैयारी के लिए ये मैच मतलब ये टूर्नामेंट काफी अहम सिद्ध होगा।
बिल्कुल, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप सामने खड़ा ही है और चेन्नई और मदुरई में होगा, दो जगह तमिलनाडु में। और जाहिर सी बात है जब आप होस्ट हैं और आप तो जो हमारे फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं हॉकी के, वो है ना उनसे उनको काफ़ी उम्मीदें होंगी आपसे कि हमारी टीम जो है यहाँ पर घरेलू मैदान में हमारे दर्शकों के सामने वो खिताब को जीते। तो ये एक अच्छा, और ये देखिए ये जो टूर्नामेंट है जो सुल्तान और जौहर कप, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि टफ टूर्नामेंट, ये इजी नहीं है। इसमें जो सारी जो टीम्स हैं वो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आते हैं तो ये एक अच्छा टूर्नामेंट होगा और इसी से हमारे जो कोच है पीआर श्रीजेश उनको एक मौका मिलेगा कि जब इस टूर्नामेंट के बाद जब सिलेक्शन के लिए वो बैठेंगे कि किन खिलाड़ियों को उनको सेलेक्ट करना है हमारे जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है सभी खिलाड़ियों के लिए कि अपना अच्छा प्रदर्शन करें।
और जाते जाते शतरंज की बात करते हैं। किशोर ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। शीर्ष तीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए। सभी जी आप स्टूडियो में आए, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद प्रियंका जी।
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।